آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
منیش ویدیہ کی کہانی عبد المجید کی مٹی۔ وہ بارش کے موسم کی امس سے بھری ایک شام تھی۔ پنکھے چلنے کے باوجود گھٹن ہو رہی تھی، سانس لے پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سرکاری دواخانے کی قطار میں کھڑے مریضوں کو دیکھنا اور انہیں ضروری دوائیاں لکھنا روزمرہ کا ہی کام تھا۔ آج بھی قطار تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار سٹول پر جو بوڑھا مریض آ کر بیٹھا تھا، اس کا قمیض پائجامہ گندلا تھا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ 80 کے قریب کا رہا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مچمچا رہا تھا، شاید اسے دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ لگاتار ہل رہا تھا، اس کے بے ترتیب سفید اور سوکھے بال پھیلے ہوئے تھے۔ چہرے پر ایک پھیکی ہنسی تھی، پر اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھسک بھری خنک تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، یوں تو عمر کا تقاضا ہے میاں، اور اس کا کوئی ملال بھی نہیں۔ آدھی عمر بت تک بنانے میں گزر گئی اور آدھی اسے گرانے میں۔ مجھے اس کے شاعرانہ انداز نے پربھاوت کیا تھا، پر اوپر سے چڑھتے ہوئے میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا، پر یہاں صرف مرض دیکھے جاتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے۔
وہی تو بتایا حضور، اب اس عمر کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جانتا ہوں، پر من سمجھانے چلا آیا ہوں۔ یوں تو زمانے بھر کے مرض پال رکھے ہیں ہم نے، پر جن میں بھی راحت مل جائے اتنا کافی ہے۔
بوڑھے پر اب غصہ آنے ہی والا تھا کہ نہ جانے کیوں غصہ جذب ہو گیا۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکیے، کچھ اور مریض دیکھ لوں، پھر آپ کے ساتھ اطمینان سے بات کرتا ہوں۔ بوڑھے نے کچھ نہیں کہا، بس سٹول چھوڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ مریضوں کا سلسلہ تھما تو میں نے بوڑھے کی اور اشارہ کیا، ہاں چاچا، تو اب بتائیے۔ تبھی میرا دھیان ان کی پرچی پر لکھے نام پر گیا، عبد المجید۔ دماغ میں کچھ کوندھا، لیکن دوسرے ہی پل خارج بھی ہو گیا، وہ یہاں کیسے؟ پھر بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے پوچھ ہی لیا، چاچا، ایک عبد المجید ہمارے قصبے میں بھی ہوا کرتے تھے، شاید 70-80 کے دور میں، جب وہاں لوگوں نے پینٹ اور بیل باٹم پہننا شروع کیا تھا۔ تب وہ پہلے درجی تھے وہاں کے، ہنر مند درجی۔ ان کے ہاتھ کے شادی کے سوٹ تو علاقے کے ہر دولہے نے پہنے، اور رف و غر تو غضب کے تھے۔ ہم لوگ ان سے اپنے پتا کی پہنی ہوئی پینٹ کو آلٹر، اسے ہمارے ناپ کی چھوٹی کرانے، یا کپڑا گل جانے پر اس کو رفو کرایا کرتے تھے۔ وہ یہ سب اتنی صفائی اور کلاکاری سے کرتے کہ کوئی پہچان تک نہیں پاتا تھا، باریکی سے اور دھاگے سے دھاگا ملاتے ہوئے۔ یہاں تک کہ کئی بار کپڑے کے مالک کو بھی ڈھونڈنا پڑ جاتا کہ پھٹا کہاں تھا یا رہو کہاں سے کیا گیا۔ وہ اچانک غصے سے لال ہو اٹھے، وہ بینچ سے تھر تھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور چلانے لگے،
مر گیا وہ عبد المجید، اب کہیں نہیں ہے اس کی طرح کا آدمی، کبھی کوئی عبد المجید تھا ہی نہیں، اب کبھی نہیں لوٹے گا وہ، مر گیا وہ عبد المجید۔
اب چونکنے کی باری میری تھی۔ مجھے سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ وہی عبد المجید ہیں، لیکن میں جن عبد المجید کو جانتا تھا وہ تو بڑے دلچسپ آدمی ہوا کرتے تھے، کھانٹی، قصہ گو اور مسخرے۔ چوک میں ان کی دکان پر ہمیشہ محفل جمی رہتی۔ عبد المجید سلائی مشین پر اپنا کام کرتے رہتے اور سننے والوں کے لیے قصے چلتے رہتے۔ وہ جس کے قصے سناتے اسی کے انداز اور سنواد اور لٹکے جھٹکے بھی۔ کئی لوگ تو قصے سننے ہی آ جٹتے، کوئی کام نہیں ہونے پر بھی ان کی دکان کے آس پاس بنے رہتے۔ وہ ہمیشہ خوش رہتے اور ان کے آس پاس کا ماحول بھی خوش فہم رہتا، وہاں زندگی ہمیشہ چہکتی رہتی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگے تو میں نے کرسی سے اٹھ کر روکا اور پھر سے بیٹھایا۔ وہ اب بھی غصے میں تھے، اور اب ان سے اس بابت بات کرنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے اس لائق سمجھیں تو مرض بتائیں، میں علاج کی کوشش کروں گا۔ وہ کچھ شانت ہوئے پر چپی سادھے رہے۔ اب گہری اداسی اور لاچاری نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ وہ بنا میری اور دیکھے بینچ سے اٹھے اور بھاری قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس بار میں نے انہیں نہیں روکا، امس اور بڑھ گئی تھی۔ میں جب دوا خانے سے باہر نکلا تو سڑکوں پر شام گھر آئی تھی، شہر کے بازار لک دک تھے اور دودھیا روشنی میں نہا رہے تھے۔ میرا من کہیں نہیں لگ رہا تھا، رہ رہ کر عبد المجید یاد آ رہے تھے۔ تب قصبے کے اس چھوٹے سے چوک میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی، ایسی دودھیا روشنی تو نہیں تھی، پر ان کی ہنسی خوشی کے اجالے پھوٹتے رہتے تھے۔ پھر کئی دن بیت گئے، میں بھی انہیں پھر سے بھولنے لگا تھا کہ انایاس ایک دن وہ مسجد کے پیچھے والی گلی کے کھنڈہر کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ وہ بیڑی کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہے تھے اور دھواں ان کے آس پاس تھا، لوٹتی دھوپ کی کچھ کرچیاں ان کے بے ترتیب بالوں میں کھیل رہی تھیں۔ میں لپک کر ان کے پاس جا بیٹھا، انہوں نے ایک پل غور سے دیکھا اور شاید پہچان گئے۔ کچھ دیر کی چپی کے بعد وہی ٹھسک بھری خنکدار آواز گونجی تھی،
کیا ہوا عبد المجید، ملا نہیں ملانا، क्यों उसे ढूंढना चाहते हो मियाँ? अब तो वक्त ने भी उसे रफू कर दिया। वक्त से बड़ा रफूगर कोई नहीं होता। बरखुरदार हमें गुमान होने लगता है कि हम बड़े रफूगर हैं, पर वक्त सबसे बड़ा रफूगर है दोस्त। सब कुछ बदल देता है, सब कुछ।
एक फीकी मुस्कान बिखेरते हुए बीड़ी के टोटे को जमीन पर रगड़ा, फिर पनीली सी आवाज में रिरियाते हुए कहा, जानना चाहते हो कि अब्दुल कहाँ गया?
क्या होगा इससे?
उनकी आवाज में अब वो ठसक नहीं रह गई थी। फिर वे उन दिनों में लौटने लगे। उनकी आंखों में मंजर चढ़ने लगे, उतरने लगे। वे कहे जा रहे थे मानो किसी और का किस्सा सुना रहे हों। अब्दुल मजीद को गुमान था अपने काम पर और फख्र था अपने हुनर पर। अपने उस्ताद से सीखा था उसने ये गुमान भी। 20 सालों तक खूब काम किया, दौलत और शोहरत दोनों मिली, पर 90 के दशक के बाद धीरे धीरे दुकानदारी फीकी पड़ने लगी। बेटे ने कई बार कहा, अब्बा वक्त बदल रहा है, लोग दर्जियों के सिले कपड़े पसंद नहीं करते, अब बाजारों में रेडीमेड कपड़ों के साथ बड़ी और दुनिया भर में कारोबार करने वाली नामी कंपनियां उतर रही हैं, अब दुकान से मशीनें हटाकर रेडीमेड का धंधा शुरू कर देते हैं। उनके तो सिर चढ़कर बोलता था गुमान, डपट देते बेटे को,
तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, रेडीमेड कपड़ों में ऐसी फिटिंग कहाँ, हुनर की बारीकी सीखो, जानते हो तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी पेढ़ी पर सिर्फ तुम्हारे वालिद के नाम से कट जाएगी।
कभी नहीं लगता था कि ऐसा दौर भी आएगा, लेकिन आया, और इतनी बेरहमी से आया कि उन्हें और उनके हुनर को कुचलते हुए नेस्त नाबूद कर गया। कुछ नहीं बचा, काम नहीं बचा तो दुकान बैठने लगी। पहले दुकान की बरकत उड़ी, या घर में दो जन का खाना मोहताज हुआ, या दोनों शायद साथ साथ हुए, पता नहीं। चौक की दुकान बेचने के लिए धमकाया जाने लगा। कहा गया कि हिंदू इलाके में दुकान नहीं रहने देंगे। पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगा, पहली बार लगा कि कस्बे में हिंदू भी हैं। अब तक तो सब अपने ही लगते थे। शरीके हयात बीच में ही चल बसी। बेटा भी काम की तलाश में दुबई चला गया, पर उनकी खातिर लौट आया। अब दो वक्त की रोटी की जुगत भी बेटे के जिम्मे थी। बेटे से कभी पूछा नहीं उन्होंने, और न कभी उसने कुछ बताया। वे उससे शर्मिंदा थे। उसने आगाह किया था, उसने जमाने की चाल को पहचाना था, पर वो ही नहीं समझ पाए। अब वो ज्यादातर दोस्तों के साथ रहता, घर में बहुत कम बोलता, कभी कुछ पैसे दे जाता और फिर हफ्तों तक नहीं लौटता। दुकान पर कभी कभार ही कोई काम आता, फिर भी वे सुबह शाम चौक का एक चक्कर लगा आते। पुराने लोगों से मेल मुलाकात हो जाया करती थी। हुआ ये भी कि रहमान, शफी, भग्या, छीतू और रईस की दुकानें छुड़ा ली गईं। वे सबको हकाल कर वहां मार्केट बनाना चाहते थे। करोड़ों कमाने का सपना था उनका। अफसर, नेता, पुलिस सब उनके थे। वो कहते थे, अब वक्त का छेद इतना बड़ा हो गया है कि रफू के लायक भी नहीं बचा। अपने काम का गुमान भले ही टूटा था, पर अपने खुद पर गुमान अभी कायम था। उन्हें लगता था कि वक्त फिर लौटेगा और इसी दुकान पर उनके बेटे के हाथों में हुनर चमकेगा। इसी आस में न दुकान बेची और न ही रिश्तेदारों के साथ शहर गए, वहीं बने रहे। हालांकि वे शिद्दत से महसूस करते कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है, जैसे कोई बनेला जानवर फुंफकार रहा है कस्बे को अपने सींगों पर उठाने के लिए। एक दिन खबर आई कि उनके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिहादियों से जुड़ने का आरोप था उस पर। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा ऐसा नहीं हो सकता, पर क्या करते। थाने भी गए, धाराओं के सामने किसी ने उनकी नहीं सुनी। कस्बे के पुराने लोगों से मिले, पर अब उनकी ही कहां चलती थी। कुछ वकीलों से भी मिले, पर पैसा कहां से लाते। वकील बता रहे थे कि कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी इन धाराओं में 10 साल से कम की कैद नहीं होती। कस्बे में जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। लोग उन्हें अजीब निगाह से देखते। उसी रात दुकान में आग लग गई। अब वहां मार्केट बन गया है। वो उस काली रात चल पड़े थे वहां से, फिर कभी न लौटने के लिए। सच कहूं तो वो उसी पल मर गए थे।
उसी अब्दुल मजीद की मिट्टी ढो रहा हूं तब से अब तक।
आसपास गाढ़ा अंधेरा छा गया था। वो उठे और खंडहर में कहीं समा गए।
तो दोस्तों, ये थी मनीष वैद्य की कहानी अब्दुल मजीद की मिट्टी। कहानी दो स्तरों पर होती है, एक वहाँ जहाँ लेखक लिखता है और दूसरी वहाँ जहाँ पाठक समझता है। आप जब कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपने कहानी जिस तरह से पढ़ी, सुनी, समझी, वो समझ ज़रूरी नहीं है कि लेखक की भी रही हो, वही कहना चाह रहे हो लेखक। और यही कहानी की खूबसूरती भी है कि वो ऐसी कहानी कह जाए जो फिर सब अपने हिसाब से समझें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कहानीकार के स्तर पर जाकर कहानी को समझा जाए, इसलिए मेरे साथ मनीष वैद्य स्वयं हैं ये बताने के लिए कि अब्दुल मजीद की मिट्टी कहाँ से आई, कैसे आई, कब आई। मनीष जी आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत।
अभी हम सुन रहे थे आपकी लिखी कहानी अब्दुल मजीद की मिट्टी, और मैं कह सकता हूँ कि उस मिट्टी की किरकिरी हम सब की आंखों में बस गई है, बच गई है थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि वो कहानी कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई।
देखिए विवेक जी, एक कहानी अपने समय और समाज के बीच से कब अचानक से स्पॉन्टेनियसली लेखक के मन को छूती है, इस बारे में सीधे सीधे तौर पे तो वक्त और इस तरह नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, यह निश्चित है कि हमारे समाज और समय में इस समय जो भी चलता है, जिस तरह की भी प्रवृत्तियां चलती हैं, वे सब कहीं न कहीं हमारे मन को मचती है और उसके जरिए ही कोई कहानी इस तरह कागज पर आ पाती है। जैसे खासतौर पर आपने जो बात की अब्दुल मजीद की मिट्टी को लेकर, तो अब्दुल मजीद की मिट्टी दरअसल एक कहानी जो है, एक बड़े छोटी सी कहानी है, इसका कलेवर बहुत छोटा है, लेकिन ये कहानी मूलतः हमारे आसपास के समय को रेखांकित करती है, जिसमें एक तरफ वो दौर है जहां भूमंडलीकरण के बाद और तमाम तरह की उदारीकरण की नीतियों के बाद भारत में खास तौर पे जहाँ बहुत छोटे छोटे लोग हुआ करते थे, दस्तकार हुआ करते थे, कलाकार हुआ करते थे, अपने हुनरबंद लोग हुआ करते थे, उनका हुनर तेजी से चौपट हुआ है इन पिछले 30-40-50 सालों में। जिस तरह हम देखें कि हमारे आसपास टेलर हुआ करते थे, जिस तरह हमारे आसपास घड़ियों को सुधारने वाले लोग हुआ करते थे, घड़ीसाज या चाकू छुरी पे जो आधार करने वाले सिकलीगर लोग होते थे, या हमारे बीच जो तमाम तरह के ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले, फोटो खींचने वाले, इस तरह के बहुत छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे और जिनकी जिनका पूरा परिवार इस पेशे से चलता था, जिनकी रोजी रोटी इस पेशे से चलती थी, वो इन बड़ी उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इन नीतियों की वजह से वो कहीं न कहीं उनका धंधा काफी प्रभावित हुआ है और लगभग कई धंधे तो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे समय में एक परिवार पर क्या बीतती है, कैसे वह परिवार अपने आप को ऐसी स्थितियों में खड़ा रख पाता है, उनकी रोजी रोटी की स्थितियां क्या होती है, ये मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहा था और इस सवाल को लेकर मैंने इस कहानी को लिखने की कोशिश की है। दरअसल इस तरह के किरदार हमारे आसपास खूब बड़ी तादाद में बिखरे पड़े हैं, हमें सिर्फ उनको देखने की जरूरत है। दूसरा एक और चीज हुई है कि जहां एक तरफ नई टेक्निक आई है, ग्लोबलाइजेशन आया है, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी ओर से धार्मिक रूप से काफी कट्टर हुए हैं। धार्मिक नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि हमें एक जुनून, एक सांप्रदायिक जो जुनून है वो बढ़ा है, कट्टरताएं बढ़ी है और इन कट्टरताओं की वजह से जो गंगा जमनी तहजीब हमारी हुआ करती थी, उस तहजीब पे एक बहुत एक तरह से चोट हुई है और वो तहजीब दरअसल तहस नहस हुई है, एक तरह का मुझे तो लगता है कि तहस नहस हुई है। हालांकि आज भी वो गंगा जमनी तहजीब मौजूद है, हम लोग एक दूसरे को आपस में प्रेम उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें आई है हमारे समाज में, उससे वो चीजें प्रभावित हुई हैं और उन चीजों ने भी हमारे समाज पर, हमारे समय पर प्रभाव डाला है और एक तरह से एक संप्रदाय के बीचों की जो दूरियां हैं, जो नफरत है, वो थोड़ी सी बढ़ी है। तो इस तरह की स्थितियों में मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियां कही जाने की जरूरत है, जो एक तरह से यह भी दिखाती है कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं।
मनीष जी, ये आपने दिलचस्प बात कही कि दौर की कहानियां हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में, ट्विटर के दौर में, फेसबुक के दौर में, यूट्यूब के दौर में, जब हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति के पास बोलने का एक मंच है और उसके ज़रिए वो बोले जा रहा है और सुनने वाले कम हो गए हैं, पढ़ने वाले तो और कम हो गए हैं, ऐसे में अब्दुल मजीद की मिट्टी जैसी कहानियाँ क्या कुछ बदलाव डालती होंगी, क्या कुछ असर डालती होंगी?
विवेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत मतलब मानिखेज बात भी कही है कि दरअसल जब लगातार बोला जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, खूब तेजी से चीजें फैल रही हैं, और हर व्यक्ति लगभग सोशल मीडिया के मंच पे तो हर व्यक्ति लगभग लेखक की तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना भी चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कहानियां जो पिछले 100 सालों से 125 सालों से हमारे अंदर की जा रही है उनकी अपनी एक रोचकता होती है, उनकी अपनी किस्सागोई होती है, और इन सबसे बढ़कर भाषा शिल्प और किस्सागोई, ये सब बात हम हाशिए पे भी रख दें कुछ देर के लिए, तो इससे बड़ी बात यह है कि वो अपने समय और समाज को एक अलग ढंग से हमारे सामने रखती है, जिसको शायद सोशल मीडिया में उस तरह से नहीं रखा जा पाता है। जिस तरह से एक लेखक अपने लंबे समय के अनुभव को, अपने विचारों को और किरदारों को गूंथता है, और वो जो गूंथी हुई कहानी है वो एक अलग तरह का बदलाव या एक अलग तरह का प्रभाव लेखक के मन में पैदा करती है, और वही प्रभाव धीरे धीरे पाठक के मन में भी पैदा होता है। तो ये जो लेखक और पाठक के बीच का संवाद, एक खासतौर पर कहानी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, कहानी के लिखने वाला और कहानी के पढ़ने वाला, इन दोनों में वो प्रभाव के आ जाने से उसका प्रभाव ज्यादा होता है, बजाय कि हम कोई लेख पढ़ते हैं, बजाय कि हम कोई सोशल मीडिया पे कोई चुटकुला सुनते हैं या सोशल मीडिया पे कोई एक अच्छी पोस्ट भी पढ़ते हैं, तो उसके प्रभाव से ज्यादा कहानी का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कई कहानियां हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में इस तरह से हैं कि उनको 100-125 साल हो गया, उसने कहा था ले लें, या पंच परमेश्वर ले लें प्रेमचंद की, इस तरह की कहानियां लगातार लंबे समय तक आज भी वो लोगों के अंदर बसी रची बसी है, तो वो इसी कारण रची बसी है कि उनकी किस्सागोई है और उनमें अपने समय का सच है। सबसे बड़ी चीज है कहानी में अपने समय का सच है, तो वो लंबे समय तक बना रहता है पाठक के मन में।
आपकी कहानियों में, हालांकि मैंने बहुत कम कहानियां पढ़ी हैं आपकी, लेकिन जितना भी पढ़ पाया मैं, उससे मुझे लगा कि उस भारत के किरदार आप उठाते हैं जो सोशल मीडिया से में अक्सर कम नजर आता है, जैसे घड़ी साज है या टेलर हैं, इस तरह के लोग सोशल मीडिया में उनकी जगह नहीं है। अगर कहीं वो नज़र आएंगे भी तो शायद कोई फोटोग्राफर अच्छी फ़ोटो ले ले तो दिख जाएगा, पर उनके जो दर्द हैं, उनकी जो बातें हैं, उन किरदारों की बातें आप करते हैं, क्या इसके पीछे एक वजह आपका खुद उस दुनिया में रह पाना भी है? मैं अपने पाठकों को, सुनने वालों को बता चुका हूं कि आप मध्य प्रदेश में देवास में इस वक्त रहते हैं और वहां काम करते हैं, और धार से आप जुड़े हुए हैं, वहां उन जगहों पर जो दरअसल दिल्ली से दूर हैं, वहां ये किरदार अभी भी जिंदा हैं इसलिए आपकी कहानी में आ पाते हैं, या कल्पनाशीलता की वजह से?
विवेक जी, दरअसल मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं देवास और धार जैसे छोटे कस्बों से आता हूँ या छोटे शहरों से आता हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरे आसपास के जो लोग हैं वे लोग दरअसल इसी तरह के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई है या जो इससे प्रभावित हैं। दरअसल जैसे आपने दिल्ली से दूर कहा, मैं तो ये कहूँगा कि इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से भी दूर हैं ऐसे लोग जो कस्बों में हैं, छोटे छोटे जो छोटे छोटे शहरों में हैं और जो गली कूचों में आज भी उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जो दुकानें थी या उनका जो छोटा मोटा धंधा था वो जिस तरह नेस्तनाबूद हुआ है और उसके खत्म होने के बाद आज वो जिस तरह की उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह का उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, वो मैं प्रत्यक्षतः देखता हूँ उन लोगों के बीच में। और ये कोई एक या दो या चार किरदार की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में मैं जब इन लोगों को देखता हूँ। दरअसल देवास भी एक तरह का औद्योगिक शहर रहा है, 70 के दशक की बात करें हम तो यहाँ कई बड़ी फैक्ट्रियां खुली, जैसे नोट छापने का कारखाना हुआ या बाकी और भी कई तरह के बड़े कारखाने शुरू हुए। इन बड़े कारखानों में देश भर के लोगों ने आना शुरू किया और उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया, काम करना शुरू किया, काफी बड़े तादाद पे काम होता था, काफी बड़े पैमाने पे लोग बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से आए भी यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है औद्योगिक रफ्तार थमती गई और वो लोग जहाँ एक तरफ उनके अपने अंचल से भी यहाँ आकर बस गए थे, वे यहाँ भी अब उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, वे उनके हाथों के लिए काम नहीं है। और उनके घरों की रोजी रोटी की समस्याएं हैं। वही नहीं, कस्बों में जो छोटे छोटे कस्बों में भी इस तरह के लोग हुआ करते, जैसे घड़ी सुधारने वाले हुए, सिकलीगर लोग हुए, टेलर लोग हुए, ये इस तरह के तमाम छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग, क्योंकि इसमें बड़े धंधे करने वाले लोगों ने तो फ्लोटेशन के साथ अपने आप को फ्लोट कर लिया, कहीं दूसरी जगह वो स्थापित हो गए, किसी दूसरी तरह के बड़े रोजगार में वो चले गए, उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। लेकिन जो छोटे छोटे लोग थे, जो इस काबिल नहीं थे, जिनके पास इस तरह की पूंजी नहीं थी कि वो बड़ी दुकान या बड़ा काम शुरू कर सकें, ऐसे लोगों ने अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लिया और एक तरह से उनका पूरा परिवार इस रोजी रोटी की समस्या में, इस तरह की दिक्कतों में चला गया और इसके कई बड़े परिणाम भी उनको भुगतना पड़े। जैसे हम अब्दुल मजीद की कहानी में देखते हैं कि एक हुनरमंद व्यक्ति जिसको अपने आप काम पे इतना गुमान होता है कि वो ये कहता है अपने बेटे से कि कई पुश्तें उसकी इस पेढ़ी की यश की वजह से ही चल जाएंगी, लेकिन अंततः वो उसके अपने जीवन में ही उस दुनिया से अलग हो जाता है। वो इसीलिए कहता भी है कि ये जो मैं मिट्टी ढो रहा हूँ, ये उस अब्दुल मजीद की मिट्टी है जो एक अब्दुल मजीद हुआ करता था। तो ये दरअसल एक कलाकार के मर जाने की, एक दस्तकार के या एक हुनरमंद आदमी के खत्म हो जाने की कहानी है। तो यही चीज मुझे अपने समय में भी लगती है, इस समय में जब सोशल मीडिया में इस तरह के लोग नहीं है, सोशल मीडिया से इस तरह के लोग काफी दूर चले गए हैं, हमारा समाज लगातार दो बड़ी खाइयों में बंटता जा रहा है, एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं जानते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, तो उनकी पीड़ा आखिर कहाँ से आएगी। तो वो हमें कहानी में ही दर्ज करना होगी और ये हमारा एक तरह से मॉरल ड्यूटी भी है और एक तरह से हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उस समाज के लोगों को सामने लेकर आए।
लेकिन आपको लगता है कि उस समाज को मौजूदा हिंदी साहित्य में पर्याप्त जगह मिल रही है?
नहीं, मुझे इस बात पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हिंदी साहित्य में फिलहाल जो लिखा जा रहा है उसमें बहुत कम रचनाकार ऐसे हैं जो इन मुद्दों को इस तरह उठाकर ला रहे हैं और उनके अंदर उस भारत के लोगों की पीड़ा, जिस भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उस लोगों उन लोगों की पीड़ा उस तरह से नहीं आ पा रही है जिस तरह से आना चाहिए, जिस तरह से वह दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े समाज का सच है।
आप खूब छपते हैं मनीष जी, आपकी आपके दो कहानी संग्रह आ चुके हैं, आपकी दर्जनों कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं और इतने पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, एक लंबी सूची है आपको मिले पुरस्कारों की। ये जो अकादमिक पहचान है, ये जो मान्यता है, ये कितनी जरूरी है?
विवेक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। हालांकि मुझे लगता है कि इन सब पुरस्कारों से भी जो बड़ा पुरस्कार है, इन सब पत्रिकाओं में छपने से भी जो बड़े सुकून और शांति की बात होती है एक लेखक के लिए, खासतौर पर लेखकी संतोष की जहां बात कर रहा हूं मैं, वहां पाठक आते हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जिस वर्ग की कहानियां लिख रहा हूं शायद वो आउटडेटेड विषय हो गया है या शायद वो एक तरह से, जिस तरह हमारे मीडिया में बात की जाती है कि वो एक तरह का ऐसा चेहरा है जहाँ जो हम उस तरह से खिला हुआ या उस तरह से चमक वाला चेहरा नहीं है, फीका, एक फीके समाज की बात में कर रहा हूँ, एक उदास समाज की बात, एक निराश समाज की बात में कर रहा हूँ। लेकिन जब लेखकों ने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उनका जब प्रतिसाद मिला, उनका रिस्पॉन्स मिला, तो वो मुझे लगा कि काफी हद तक वो उस बात को समझ पा रहे हैं या उस स्टैंड तक जा पा रहे हैं जिस स्टैंड पे मैं खड़े होकर कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कहानियां छपी भी बहुत, संपादकों ने भी इन्हें पसंद किया और संपादकों से या पुरस्कार की जूरी चयन समिति से ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे पाठकों ने इसको पसंद किया। क्योंकि अंततः मैं एक पाठक के लिए कहानी लिखता हूँ, मेरा अभिष्ट कहीं छपने का या पुरस्कार से पुरस्कार पाने का नहीं होता है।
इस पर यही कह सकते हैं हम कि आमीन, ये ऐसा हो, ऐसी दुनिया हमारे सामने आए और उसके लिए आप जैसे लोगों का होना, लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए और समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।